SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
अगर आप कभी बनारस गए हो तो आपको सुबह बनारस के बारे में जरूर पता होगा। सुबह बनारस यानी बनारस की सुबह अपने आप में ही इतनी खूबसूरत होती है कि उसकी चर्चा अलग से की जाती है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हम आपके लिए बनारस की सुबह तो नहीं ला सकते, लेकिन बनारस की सुबह के सुर जरूर ला सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं मेलबर्न के जाने माने बांसुरी वादक विनोद प्रसन्ना जी, जो बनारस घराने के सबसे बड़े बांसुरी वादक परिवार से हैं। विनोद जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपकी संगीत की शुरुआत कब हुई और आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली?
तो मैं बनारस से हूँ और मेरी फैमिली जो है म्यूजिक में तकरीबन 250 साल से है। तो हम लोग के घर में बहुत पहले राजा महाराजा जो होते थे उनके यहाँ मंदिर में, और क्योंकि 250 साल पहले तो रेडियो वगैरह ये सब कुछ था नहीं, तो लाइव म्यूजिक ही होता था उस समय। तो उसमें शहनाई बजता था, पहले शहनाई था, फिर बाद में फिर बांसुरी आया। तो बनारस से ही है, बनारस घराना से। तो क्या हुआ कि मैं बनारस से हूँ और फिर मेरे फैमिली में म्यूजिक है, तो ऑब्वियसली इट वॉज ईजी फॉर मी टू लर्न द म्यूजिक। लेकिन जो प्रैक्टिस पार्ट था वो हमेशा मुश्किल होता है। तो प्रेरणा मुझे सबसे ज़्यादा मिली, जैसे कि मैं छोटा था तो भगवान कृष्ण का हमेशा वो एक टीवी में सीरियल आता था बहुत पहले ना, क्या महाभारत तो सारे लोग देखते थे उस समय। बहुत पहले कुछ कुछ लोग के पास कलर टीवी था, ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट टीवी ही था। ये साल हो गया आपका 1996।
तो फिर मेरी सबसे पहली फरमाइश यही होगी कि आप महाभारत से कृष्ण जी का बांसुरी का एक पोर्शन हमारे लिए परफॉर्म कर दीजिए।
मैं अभी बजाता हूँ। ये जो फ्लूट का पीस है ये ऐसा है कि जैसे कि भगवान जो श्री कृष्ण जी हैं वो कहीं गांव में कहीं जंगल में हैं, पेड़ के ऊपर बैठ के ऐसे बांसुरी बजा रहे या नदी किनारे, ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है फ्लूट का। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आ गए, सबका जो दुख है वो सब हर लेंगे वो। ये ऐसे फ्लूट सुनने से ऐसा लगता है अरे कितना बढ़िया, कितना मधुर है, जैसे लगता है कि आपका सभी आपका दुख गम ये सब आपका चला गया।
वो तो बिल्कुल आपने सही बोला, मन को एक सुकून मिल गया, दिन की अच्छी शुरुआत हो गई ये धुन सुन के।
तो फिर क्या हुआ कि मेरे जो नाना जी थे वो दिल्ली में थे, क्योंकि उनका जॉब था आकाशवाणी रेडियो स्टेशन में, वो दूरदर्शन में भी काफी प्रोग्राम करते थे। तो फिर मैं दिल्ली चला गया मैं अकेले ही, उस समय मैं करीबन 12-13 साल का ऐसा ही था। और फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और नाना जी ने नियम बना दिया है सुबह 4 बजे उठना था और फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। वो अपना लेट जाते थे और सुनते थे, तो ऐसे करते करते दिन का मतलब 10-12 घंटे का प्रैक्टिस हो जाता था डेली 7 दिन। फिर धीरे धीरे करते करते 3 साल बाद मैंने जब मैं बनारस आया तो पहला मैंने परफॉर्मेंस किया। बनारस में घाट पे एक माता शीतला का मंदिर है, वहाँ हमेशा श्रृंगार होता है, तो बहुत सारे लोग अपना आकर के म्यूजिक वाले अपना हाजिरी देते हैं वहाँ पे। तो मैं भी गया, तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग थे और जिन्होंने मुझे फ्लूट नहीं सिखाना चाहते थे, पैसा मांग रहे थे मेरे रिलेटिव, वो और बहुत सारे लोग एकदम बिल्कुल शॉक हो गए क्योंकि ये लड़का तो फ्लूट नहीं बजाता था, ये क्या हो गया।
आपने कौन सा राग गाया, क्या वो हमारे श्रोताओं के लिए आप परफॉर्म कर सकते हो?
जरूर जरूर जी।
बिल्कुल बिल्कुल दिल को छू गई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस राग के बारे में हमें कुछ और बताइए, कुछ और जानकारी दीजिए।
ये राग जो है ये शाम का राग है, इसका नाम है राग जोग। तो ये राग का जो है फीलिंग है कि एक एक इंसान जो कि अध्यात्म की तरफ जाने लगता है और उसमें ही खोज करता है कि ये है क्या, मानव जीवन क्या है, तो ये उसमें खोज में लग जाता है। तो इसका मेन पर्पज इस राग का यही है, राग जोग। और सुनने से भी आपको ऐसा लग रहा होगा, तो आध्यात्मिक मार्ग जो है ये आपको ऐसे जगह पे ले जाता है जहां आपको ये समझ में आने लगता है कि ये मन कैसे काम करता है।
जी, अब हम आपकी ऑस्ट्रेलियन म्यूजिकल जर्नी के बारे में बात करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में कब आए और सबसे पहले आपने कहां परफॉर्म किया?
मैं यहां पे आया था 2008 में। यहां आया तो एक तबला प्लेयर थे ग्लेन नीबस, जो कि अभी जापान में रहते हैं, तो वो भी बनारस से सीखे हुए थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने प्रोग्राम किया यहाँ पे थॉर्नबरी में, एक योगा सेंटर था वहाँ पे मैंने बजाया था राग यमन। उसके बाद एक फेस्टिवल होता था यहाँ पे बेलेंजन, एक जगह है कॉप्स हार्बर के पास, फेस्टिवल का नाम था ग्लोबल कार्निवल, तो वो पहला फेस्टिवल मैंने किया था ग्लेन जो मेरा दोस्त था तबला प्लेयर उनके साथ। फिर और लोग वहाँ फेस्टिवल से जानने लगे, फिर और भी जैसे कि वर्ल्ड म्यूजिक तो आप जानते हैं कि मेलबर्न में कितना पॉपुलर है, यहाँ कितने सारे आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया का ये म्यूजिकल कैपिटल है, अपने इंडियन म्यूजिक में ही नहीं वेस्टर्न म्यूजिक में भी बहुत ही मतलब माहिर संगीतकार यहाँ पे हैं। फिर उनके साथ फिर कोलैबोरेशन होने लगा, एक बहुत माहिर ड्रमर है यहाँ पे डेविड जोन, बहुत अच्छा बजाते हैं, जैज ड्रमर है। फिर सिडनी में है बॉबी सिंह तबला प्लेयर, उनके साथ भी प्रोग्राम वगैरह किया, तो फिर ऐसे करते करते कोलैबोरेशन होने लगा। फिर अभी फिलहाल अभी जो मैं मोनेश यूनिवर्सिटी में जो कर रहा हूँ, थर्सडे 27 अप्रैल को जो मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है, तो इसमें गिटारिस्ट है वो थोड़ा हटके है, तो अभी वो मुझसे थोड़ा बहुत सीख रही है इंडियन म्यूजिक के बारे में। मैंने अभी कुछ कंपोजिशंस वगैरह भी उसके साथ बनाए जो कि हम मोनेश यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट करने वाले हैं। कंपोजिशन ऐसा है कि जो कि सुनने में पूरा इंडियन है, पूरा राग के ऊपर बेस्ड है, कहीं से भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन सुनने में आपको वेस्टर्न सा लगेगा, प्योर क्लासिकल है, बहुत ही अपलिफ्टिंग है।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी राय में भारतीय क्लासिकल संगीत या शास्त्रीय संगीत का ऑस्ट्रेलिया में क्या भविष्य है?
भविष्य बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, लेकिन अगर उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ऑर्गेनिक तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो ऑर्गेनिक तरीका क्या है, इंडियन म्यूजिक जो है आध्यात्मिक मार्ग है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत था, और भी म्यूजिक है, बॉलीवुड है, और भी अलग अलग तरीके के जैसे कि भांगड़ा है, वो सारा इंटरटेनमेंट में आ जाता है, लेकिन असली जो संगीत हमारा है वो जैसे कि लोग बोलते हैं ना मेडिकल टर्म में यू नीड ए मेडिकेशन, है ना, मैं क्या बोलता हूँ यू नीड म्यूजिकेशन। तो आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सही तरीके से सही म्यूजिक आप सुनते हैं तो आपको वो आपका खर्चा बच जाएगा। तो इंडियन म्यूजिक का भविष्य बहुत ही अच्छा है अगर सही लोग इससे इसमें जुड़ेंगे और समझेंगे कि ये अपना इंडियन म्यूजिक जो है ये बहुत आध्यात्मिक है, बहुत ही हीलिंग फ्रिक्वेंसीज है इनके अपने म्यूजिक के अंदर, और साथ साथ जो म्यूजिक करने वाला है उसका सोच इंटेंशन अलग होता है करने का, उसका इंटेंशन अध्यात्म हो जाता है।
जी, तो आखिर में मैं आपसे यही फरमाइश करूंगी कि कुछ बॉलीवुड फिल्मों के गाने हमारे लिए परफॉर्म कर दीजिए।
जी जी जी, तो बांसुरी का जो श्रेय ज्यादातर बॉलीवुड में जाता है वो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी की वजह से। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले जैकी श्रॉफ की, हीरो।
जी,
तो फिर क्या हुआ कि वहां से बांसुरी का सिलसिला शुरू हो गया। तो पहले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि मेरे नाना जी से ही सीखा उन्होंने, पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से, तो फिर हरि जी और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ये दोनों लोग बॉलीवुड में म्यूजिक करने लगे। जैसे चांदनी पिक्चर आई थी, लम्हे, बहुत सारे पिक्चरों में हीरो, तो ये लोग उसमें म्यूजिक डायरेक्शन किया हुआ है और खुद बजाते भी थे। पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ, घर से निकलते ही।
हाँ जी,
तो वो पहले मैं बजाता हूँ।
बहुत बढ़िया
जी। और यमन में ही एक और भी है, कैसे ये है, इसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जो थे इस फिल्म में थे, और शिल्पा शेट्टी थी। तो अब यमन हो गया। एक दूसरा आपको इसमें ये बताते हैं, एक पुरानी फिल्म थी, श्रोता लोग शायद इसको समझ जाएं। तो जाने से पहले एक मैं और आपके लिए बजाना चाहता हूँ, श्रोता के लिए भी। Thank you.
SBS हिंदी से इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है फेबिन जोसेफ ने।